ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृतम्। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृतम्। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृत। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातम् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर हरे कृष्ण। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबर दारुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरम अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानामि न पुरा सरस्वती विदन्वता च सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यत समेऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी ययिमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमूष पूरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो षोडशात्मक
गुजराती माँ से पढ़िया हिंदी समझ वाला भक्त पण आया छे એટલા માટે આપણે હિન્દી માં પ્રવચન કરશું હિન્દી સબ લોગ સમજતે હૈ સમજતે હિન્દુસ્તાન મે રહકર આજ પરમ પવિત્ર દિન હૈ આજ શ્રીમન નિત્યાનંદ પ્રભુ કા आविर्भाव दिन है। हम सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए आज परम पवित्र दिन है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमें चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री राधा और कृष्ण के मिलित स्वरूप है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को यदि प्राप्त करना है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा यदि प्राप्त करना है, तो श्रीमन नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। तो आइए नित्यानंद प्रभु के बारे में पहले हम यह जानेंगे, नित्यानंद प्रभु है क्या। नित्यानंद प्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, ये तीनों ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन है। चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, उस चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में कहते हैं कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। अपना ग्रंथ चैतन्य चरितामृत प्रारंभ करने से पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अवतारी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ही सभी अवतार प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण कोई अवतार नहीं है, वे अवतारी है और उसी के भगवान श्री कृष्ण के ही द्वितीय स्वरूप श्री बलराम जी है। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान श्री कृष्ण अकेले थे और भगवान श्री कृष्ण को जब सृष्टि लीला करनी हुई, तो भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण से एक स्वरूप प्रकट हुआ और वह स्वरूप है श्री बलराम जी। तो बलराम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तत्व से दोनों एक हैं, परंतु देह अलग अलग है, द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप है भिन्न मात्र काय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण और बलराम दोनों एक ही स्वरूप हैं, परंतु काया शरीर मात्र भिन्न है। और आद्य काव्य व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, और भगवान श्री कृष्ण को जब सृष्टि चलानी होती है, तब यह बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को हेल्प मदद करते हैं। किस प्रकार से सही कृष्ण नव द्वीपे, बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को सृष्टि लीला में हेल्प करते हैं, वही बलराम जी और वही कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। सही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र। भगवान श्री कृष्ण आज से 521 साल पहले भारत के इस बंगाल में नदिया जिला में मायापुर में श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए थे। और वह जो बलराम के बारे में मैंने आपको कहा, सही बलराम संगे श्री नित्यानंद, और वही बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में 520 साल पहले इस धराधाम पर आविर्भूत हुए। श्री बलराम गोसाई मूल शंकरषण। श्री बलराम गोसाई बलराम जी ये मूल शंकरषण है और पंच रूप धरी करे न कृष्ण र सेवन। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला याद करा रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। बलराम जी का एक नाम शंकरषण है। बलराम जी का नाम शंकरषण इसलिए हुआ क्योंकि बलराम जी कंस के कारागार में रहने वाले देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे, परंतु भगवान श्री विष्णु के कहने के अनुसार दुर्गा देवी ने साक्षात योग माया ने देवकी के गर्भ से कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, तो देवकी के गर्भ से कर्षण करने के कारण बलराम जी का नाम शंकरषण हुआ। तो यही कह रहे हैं कि बलराम गोसाई मूल शंकरषण। बलराम जी का एक नाम शंकरषण है और वे भगवान को पांच रूप से सेवा करते हैं। पंच रूप धरी करेन कृष्णेर सेवन। इस संसार के जीव भगवान को एक रूप से एक रस से भजन करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु बलराम जी एक भगवान के ऐसे भक्त हैं जो पांचों रस में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे जब कृष्ण और बलराम जब गैया चराने के लिए जाते हैं और कृष्ण कुछ गलत गलत हरकतें करते हैं तो बलराम जी उसे डांटते हैं। कृष्ण जब मट्टी खाते हैं तब भी बलराम जी डांटते हैं। कृष्ण जब थक जाते हैं तो बलराम जी कृष्ण को अपने गोद में रखकर उनका सिर दबा देते हैं। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस में बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। दास्य रस में भी बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण जब खेलने कूदने के लिए जाते हैं तो बलराम जी उसे हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं। साख्य रस में तो प्रचलित है ही, कृष्ण के साथ खेलते हैं कूदते हैं। और माधुर्य रस में भी बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। बलराम जी का एक स्वरूप गोपी के रूप में है और उस गोपी के द्वारा कृष्ण को रासलीला में सहायता करते हैं। और पांचवा शांत रस में भी बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस में किस प्रकार से बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं? शांत रस में अनंत शेष के द्वारा या करताल के द्वारा, मृदंग के द्वारा भगवान की लीला में सहायता करने वाले जितने भी तत्व है, उस तत्व के द्वारा शांत रूप में बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो भक्तों, इसका अर्थ यह हुआ, ये करताल भी बलराम जी का स्वरूप है। ये करताल भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है। शांत रस से करताल, मृदंग और इत्यादि मंदिर में जितनी भी दीवारें हैं जो भगवान को की सेवा कर रही हैं, ये सब बलराम जी के स्वरूप है। इसलिए हम कभी भी करताल या मृदंग को हाथ में लेते हैं तो पहले सिर से स्पर्श करते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण करताल नहीं है, ये साक्षात बलदेव जी का ही एक स्वरूप है। शांत रूप से यह करताल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। तो इस प्रकार से पंच रूप धरी करे न कृष्ण र सेवन, पांच रूप से बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। और उससे भी बड़ी सेवा आपने करे न कृष्ण लीला र सहाय। जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो बलराम जी चार स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। किस प्रकार? बलराम जी अपने शरीर से एक स्वरूप को प्रकट करते हैं, उसका नाम है शंकरषण, और उससे तीन स्वरूप होते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। और यह मूल संकर्षण गोलोक धाम में गोलोक धाम के चारों कोने पर खड़े रहकर गोलोक धाम की सेवा करते हैं और उसी के दूसरे स्वरूप संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध और प्रद्युम्न वैकुंठ में चारों कोने पे खड़े रहकर सेवा करते हैं। ये बलराम जी के ही स्वरूप है और वही बलराम जी संकर्षण से कारुणदक्षायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और कारुणदक्षायी विष्णु अपने रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। जब अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं तो उस ब्रह्मांड के अंड से ब्रह्मांड में एक भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, उसे गर्भोदकशायी विष्णु कहते हैं। और गर्भोदकशायी विष्णु जब इस सृष्टि का सर्जन करते हैं तब सभी सृष्टि में प्राण देने के लिए गर्भोदकशायी विष्णु से शिरोदकशायी विष्णु प्रकट होते हैं और शिरोदकशायी विष्णु प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण की स्पेशल सहायता करने के लिए ये सभी ब्रह्मांडों को धर कर रखने के लिए यही बलराम जी अनंत शेष के रूप में अपना स्वरूप धारण करते हैं। तो कविराज गोस्वामी गिनाते हैं कारुणदक्षायी विष्णु, शिरोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु और अनंत शेष, ये चारों रूप में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और सेवा करके इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो तात्पर्य यही है कि जो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं वही बलराम जी इस कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण जब इस संसार के जीव का उद्धार करने के लिए आए तो कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए वही बलराम जी नित्यानंद के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए उसके ठीक एक महीने पहले नित्यानंद प्रभु, एक साल पहले नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे। और वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत ही सुंदर कहते हैं, इष्ट देव वंदो मोर नित्यानंद राय। वास्तव में नित्यानंद प्रभु हमारे इष्ट देव है क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल सकती और हम सब गौड़ीय भक्तों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा की बहुत आवश्यकता है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को प्रश्न पूछा गया कि यदि आपको दो ऑप्शन दिया जाए, दो विकल्प दिया जाए कि आपको कृष्ण चाहिए या चैतन्य महाप्रभु चाहिए, यदि आपको कहा जाए कृष्ण को आप ग्रहण करोगे या महाप्रभु को ग्रहण करोगे, तो महाराज जी ने कहा हम तो चैतन्य महाप्रभु को ग्रहण करेंगे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस संसार के जीवों के अपराध को नहीं देखते हैं, केवल इस संसार के जीवों के प्लस पॉइंट को देखते हैं। वे अपनी लीला से आगे चलकर बताएंगे। तो ऐसे इष्ट देव नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूं। सहस्त्र बदन वंदो प्रभु बलराम, जहार सहस्त्र मुख कृष्ण जशोधाम। जो बलराम जी, जो नित्यानंद प्रभु अपने सहस्त्र सहस्त्र वदनों से, अपने सहस्त्र सहस्त्र मुखों से नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण की गाथा गाते रहते हैं, यदि हमें भी उस प्रकार से भगवान की लीला का स्मरण और श्रवण और कीर्तन करना है तो नित्यानंद प्रभु की अत्यंत कृपा की आवश्यकता है। महारत्न थुई जेन महाप्रिय स्थाने, जशो रत्न भंडार श्री अनंत वदने। बहुत सुंदर बात कहते हैं, जैसे इस संसार में व्यक्ति अपने महारत्न महाधन को, डायमंड को किसी अच्छी जगह पर किसी सेफ में रखता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार के सर्वोच्च धन को, जैसे हम हमारी कीमती वस्तुओं को किसी लॉकर में या तिजोरी में रखते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने सर्वोच्च धन को कहां रखे हैं, तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु के अनंत शेष के मुख में रखे हैं। इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा धन गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये धन इस पृथ्वी का नहीं है, जन लोक मर लोक तप लोक सिद्ध लोक का भी नहीं, ब्रह्म लोक का भी नहीं, वैकुंठ का भी नहीं, गोलोकेर गोलोक का परम धन यदि कोई है तो वह हरि नाम संकीर्तन। तो ऐसे हरिनाम रूपी धन भगवान ने कहां छिपा कर रखा है? જશો રત્ન ભંડાર શ્રી અનંત વદન અનંત શેષ બલરામજી નિત્યાનંદ કે મુખ મે ઇસ ધન કો છિપા કર રખા હે ઇસલિયે અત એવ આગે બલરામેર સ્તવન ઇસલિયે સબસે પહેલે હમે બલરામજી કો નિત્યાનંદ પ્રભુ કો પ્રણામ કરના ચાહીએ યદિ ઉસ ધન કો હરિનામ રૂપી ધન કો ચાહીએ તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કો પ્રણામ કરના ચાહીએ તતો દિક ચૈતન્ય રે પ્રિય નહીં આર નિત્યાનંદ પ્રભુ સે ઇસ નિત્યાનંદ પ્રભુ से संसार में चैतन्य महाप्रभु को कोई प्रिय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को यदि कोई प्रिय है तो उनके प्रिय सखा नित्यानंद प्रभु निरवधि से देह करे न विहार, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने सारे कार्य नित्यानंद प्रभु के शरीर से ही संपन्न करते हैं। ताहर चरित्र जेबा जने सुने गाय कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। यदि कोई नित्यानंद प्रभु के का गुणगान गाता है, नित्यानंद प्रभु के लीला की कथा का श्रवण करता है तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल उस भक्त के अनुकूल हो जाते हैं जो नित्यानंद प्रभु की कथा को सुनते हैं। यदि प्रभु को भगवान को अनुकूल करना है तो नित्यानंद प्रभु की कथा लीला सुनना अति आवश्यक है। महाप्रीत हन ताने महेश पार्वती। यदि कोई नित्यानंद प्रभु की कथा सुनता है तो उसे देव देव महादेव भोलेनाथ शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, क्योंकि जीवहार पूरे तार शुद्धा सरस्वती। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में वर्णन है, शिव जी के आराध्य भगवान श्री बलराम जी हैं। यदि कोई नित्यानंद प्रभु के गुणगान गाता है तो उसे महादेव शिव जी और पार्वती जी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, और दोनों कृपा करके जैसे नरसिंह मेहता को भगवान की विशुद्ध लीला रासलीला का दर्शन करवाया वैसे समर्थ शिव जी हम पर कृपा करके हमें भगवान की दिव्य लीला का दर्शन करवा सकते, यही भाव छिपा है। तो नित्यानंद प्रभु की लीला श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है। आज परम पवित्र दिन है, इस दिन में यदि नित्यानंद प्रभु की लीला का श्रवण किया जाए तो इसका हजारों हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तो आइए नित्यानंद प्रभु की लीला संक्षिप्त में हम सुने। नित्यानंद प्रभु का जन्म माघ शुक्ला, ये जो चल रहा है माघ शुक्ला संवत 1530 एक चक्र गांव में, पिता हराय पंडित जिसे हराय ओझा भी कहा जाता था और माता पद्मावती। पद्मावती के गर्भ से आज से 522 साल पहले एक बालक का जन्म हुआ। एक चक्र गांव में यह रहते थे और जन्म होते ही इस बालक का नाम चिदानंद रखा गया। चिदानंद चित आनंद, जो निरंतर आनंद में विहार करता रहे, इसे चिदानंद कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये चिदानंद की लीला है। बचपन से ही ये चिदानंद शांत स्वभाव के थे। व्यर्थ ही समय वेस्ट करना, किसी गलत कामों में खेलना कूदना इत्यादि, ये चिदानंद नाम का बालक ऐसे खेल कूद में नहीं पड़ा रहता था। जन्म से ही भगवान का अनन्य भक्त था और खेल कूद न करते हुए निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वास्तव में यह नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, और गुरु जो होते हैं अपने आचरण से अपनी आचरित प्रभु जगेर जीवेर सिखाए, अपने आचरण से संसार के जीव को उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से जीवन व्यापन करना चाहिए। बचपन में हमें जो भी समय मिला है इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसी प्रकार का उपदेश प्रहलाद महाराज भी सप्तम स्कंद में देते हैं। प्रहलाद महाराज जब छुट्टियों में खेलकूद, सारे असुर बालक खेलकूद करते थे तो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को यही उपदेश देते थे कि हे मेरे प्रिय मित्रों, जीवन का अमूल्य समय मिला है, ये व्यर्थ ही नहीं गवा देना चाहिए, खेलकूद में इस समय को नहीं गवाना चाहिए। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्ततम। यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, 84 लाख की योनि काट कर ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और ये भी मनुष्य जन्म 84 लाख की योनि काट कर प्राप्त हुआ है तो बहुत कम समय के लिए। तो इस कम समय में इस जीवन के इस समय को व्यर्थ ही नहीं गवा देना चाहिए। और ये जो बचपन की जो उम्र है ये बहुत बिल्कुल ठीक उम्र है भजन करने के लिए, क्योंकि जब बड़े हो जाओगे, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान, बचपन है इसलिए स्वतंत्र हो, भजन कर सकते हो। परंतु यदि विवाह हो गया तो कथम विवाह नहीं भजन नहीं कर पाओगे। जब बहुत ही सुंदर पत्नी आपके घर पर आएगी और आपके कमरे में बैठकर मीठी मीठी बातें करेगी और आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करेगी, तब कहां से भगवान याद आएंगे। तजेत कोशस्कृह दिवे हमान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम। फिर पत्नी से बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, उसे स्कूल में पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़े बड़ा करेंगे, उसका विवाह करेंगे। इस प्रकार से यह फजीहत में फंसकर जीवन बह जाएगा, भजन करने का समय नहीं मिलेगा। और स्थिति कैसे होगी? त्यजेत कोशस्तु दिवे हमान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम। जैसे रेशम का कीड़ा अपनी ही लार ग्रंथि से अपना घर बनाने लगता है, परंतु एक दिन ऐसा घर बनाता है कि उस घर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं छोड़ता है, अपने ही बनाए हुए घर में एक दिन तड़फड़ा कर मर जाता है। वैसे ही संसार का जीव अपनी ही बुद्धि से विवाह करता है, पुत्र करता है, पुत्र का विवाह, उसके बच्चे, और इस प्रकार से करते करते जीवन बीत जाता है, अपने ही बनाए हुए घर में मर जाता है, भजन नहीं कर सकता है। इसलिए है मेरे प्रिय मित्रों, बचपन से ही भजन करना चाहिए। विवाह करने के बाद कोई भरोसा नहीं कैसे भजन होगा, और जिसका विवाह हो चुका है वह तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कितना भजन हो सकता है। सभी ओर से बच्चों का टेंशन, पत्नी का, कमाने का टेंशन, और उसमें भी मंदी चल रही है तो उसका टेंशन, दुनिया भर की। इसलिए यह बचपन की जो उम्र है बहुत अच्छी है, इसीलिए यह चिदानंद बचपन से ही भजन में लग गया। और कभी खेल भी खेलता था तो भगवान के विषयक, भगवान पर्यक खेल होता था, ड्रामा करते थे, लीला करते थे, बहुत ही सुंदर ये चिदानंद लीला करते थे। अपने गांव में सभी बच्चों को मिलाकर रामायण खेलते थे, और क्योंकि ये बलराम है, शेष है, इसलिए स्वयं लक्ष्मण जी का पात्र लेते थे, और सब किसी को कुंभकर्ण, किसी को रावण, किसी को राम, किसी को सीता, इस प्रकार से सबको पात्र देकर शुरू हो जाता। तो वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही सुंदर लीला कह रहे हैं कि एक समय की बात, ये लक्ष्मण तो बने हुए थे और लक्ष्मण के भाव में ही रहते थे, जैसे हमारे नटनागर प्रभु भावनगर में ड्रामा करने के बाद वे लक्ष्मण के ही भाव में रहते हैं। परंतु ये तो बहुत दिव्य स्थिति थी, लक्ष्मण के ही भाव में रहते थे, कभी भी रामायण का ड्रामा होता तो लक्ष्मण ही बन जाते। तो एक समय वह लीला करते करते, ड्रामा करते करते, कुंभकर्ण ने शक्ति बाण मारा, और ड्रामा में यह था कि बाण मारकर मूर्छित हो जाना है और हनुमान जी को जड़ी बूटी संजीवनी लेकर आना है, जब संजीवनी उसे घोलकर पिलाएंगे तब जाकर खड़ा होना है। तो पूरा प्री प्लान था। तो सब लोग लीला करने लगे, उतने में शक्ति बाण लगा इस चिदानंद को जो लक्ष्मण बने थे, शक्ति बाण लगकर ही गिर गए। तो भगवान रामचंद्र जो बने थे अपने गोद में उसका सिर लेकर सहलाने लगे, और हनुमान जी को कहा कि जाओ इसे जीवित करने के लिए संजीवनी लेकर आओ। तो हनुमान जी, मेरे जैसा होगा संजीवनी लेने नहीं गया, अपने घर चला गया है। और यहां पर तो 3-4-5 घंटे बीत गए और ये चिदानंद तो वास्तविक मूर्छित हो गया। फिर तो ये राम तो देखा कि ये तो वास्तविक है, तो उठ ही नहीं रहा है, कहा अब ड्रामा खत्म हो गया, रात हो गई, लेकिन ये उठा ही नहीं। अब चिदानंद के पिता हराय पंडित आए, पद्मावती आए, और पूरा गांव एकत्रित हो गया, अरे ये बालक खेलते खेलते मर गया, अब क्या करें। सब लोग रोने लगे, क्या गुजराती में पोकर मुकने लगे, सब लोग रोने लगे। तब वो राम को याद आया कि मैंने हनुमान को भेजा था जड़ी बूटी के लिए। तो राम ने बुलाया, हनुमान जी यहाँ आओ, जड़ी बूटी लेकर आओ। तो हनुमान जी दो तीन चक्कर लगाकर किसी पेड़ के पौधे को लेकर आया। राम मैं जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। चिदानंद खुदा खुद की मार कर खड़ा हो गया और कहा कि मैं जीवित हूँ। तो इस प्रकार से बचपन चिदानंद का इस प्रकार से गुजर रहा था। जब चिदानंद 12 वर्ष के हुए तो एक समय की बात, राय पंडित एक वैष्णव को चाहिए कि जब भोजन करने बैठे हैं तो अपने आजू बाजू में ढूंढे कोई भूखा तो नहीं है। चिदानंद के पिता राय पंडित भोजन करने से पहले दो बार चक्कर लगा देते गांव में कि कोई भूखा तो नहीं है, और यदि कोई भूखा होता तो सबसे पहले अपने घर में उसे खिलाते और बाद में स्वयं खाते। इस प्रकार से एक दिन वे घूम रहे थे तो अपने गांव में एक तेजस्वी सन्यासी को देखा और उस सन्यासी को लेकर अपने घर पर आए और घर पे आकर बहुत ही सुंदर भोजन करवाया, बहुत ही सुंदर सेवा की। अपने पुत्र चिदानंद को भी कहा कि सेवा करो। चिदानंद ने भी बहुत ही सुंदर प्रकार से सेवा की और सेवा करने के बाद जब ब्राह्मण जा रहे थे, अब ब्राह्मण कितना भी बड़ा हो, कितना भी सुंदर भोजन करा दो, कितना भी सुंदर दान दे दो, परंतु जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तब तक वे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसे हरिश्चंद्र के प्रसंग में, राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को पूरा भूमंडल दान में दे दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन दान तो दे दिया परंतु दक्षिणा बाकी है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हरिश्चंद्र ने कहा क्या चाहिए? विश्वामित्र ने कहा कि 10 सोना मोहर चाहिए। राजा ने ताली बजाकर कहा 10 नहीं 1000 सोना मोहर दे दो। विश्वामित्र ने राजा को सावधान किया, राजन पूरा भूमंडल मुझे दान में दे दिया है और तुम 10000 सोना मोहर मंगा रहे हो, या क्या यह 10000 सोना मोहर इस भूमंडल के बाहर की चीज है? एक बार दान किए हो दूसरी बार दान कर रहे हो। यदि सोना मोहर देनी है तो इस भूमंडल से बाहर निकलो और बाहर से लेकर आओ और फिर दान करो। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। राजा हरिश्चंद्र को पता था काशी नामक जो शहर है इस पृथ्वी पर नहीं बसा है। काशी में जाकर काशी की चौराहे में खड़े रहकर प्रार्थना करने लगे, हे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। बिक गए, स्वयं बिक गए अपनी पत्नी तारामती रोहित को बेचकर वो साधु की दक्षिणा को पूर्ण किए। ठीक उसी प्रकार हराय पंडित इस तेजस्वी सन्यासी को भोजन तो करवा दिए, फिर कहे कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? लेकिन कुछ साधु ऐसे होते हैं। ये तेजस्वी सन्यासी ने कहा, यदि आपको दक्षिणा देनी है तो ये आपका पुत्र बहुत ही अच्छी सेवा कर रहा है, ये पुत्र मुझे दे दो। राय पंडित के हृदय में बहुत बड़ा आघात प्रहार हुआ कि जिस पुत्र को 12-12 साल तक मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, आज जब कुछ आशा बनी है इस पुत्र पर और ये कह रहे हैं कि आप मुझे चाहिए आपके पुत्र को। लेकिन बहुत बड़ा धर्म संकट, यदि पुत्र को नहीं देते हैं तो धर्म टूटता है और यदि पुत्र दे देते हैं तो पुत्र का विरह दुख देता है। क्या किया जाए? विनोददास ठाकुर कहते हैं, यदि इस चिदानंद के सामने देखा जाए तो वे तो बहुत प्रसन्न थे, वे तो लक्ष्मण के भाव में थे और वे यही समझ रहे थे विश्वामित्र आए हैं मुझे लेने के लिए। जैसे रामायण में ताड़का मारी सुबाहु, जब विश्वामित्र के यज्ञ में दुविधा दे रहे थे तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए थे राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए। तो ये तो वही भाव में थे और ये तो प्रैक्टिस थी क्योंकि रोज ड्रामा कर रहे थे इसका। तो वनवास घर छोड़कर चला जाना है तो अभ्यस्त थे, इसे कोई टेंशन नहीं था। परंतु पिता हराय पंडित के हृदय में बहुत आघात हुआ। पुत्र जब घर छोड़कर जाता है तो सबसे ज्यादा दुखी माता और पिता होते हैं, क्योंकि माता और पिता ही पुत्र सुख को समझ सकते हैं। जिस पुत्र को 9 महीने तक गर्भ में पाल पोस कर बड़ा किया है, जिस पुत्र को पाल में पोसने के लिए जीवन लगा दिया है, वह पुत्र जब घर छोड़कर चला जाए तब क्या बीतती है, ये तो जिसके पुत्र छोड़कर गए हैं उसे ही पता है। हम तो दो आंसू देखकर दो आंसू गिरा लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। खैर मांगा कि आप आपके पुत्र को दे दीजिए। सन्यासी ने समझाया कि पुत्र में आसक्त मत हो, यदि आपका पुत्र मेरे साथ चलता है तो वे निरंतर भगवान के भजन में लगेगा और इससे आपका ही नहीं 21 पीढ़ी का उद्धार हो सकता है। तो चिदानंद उस सन्यासी की उंगली पकड़कर चला गया और सन्यासी उस चिदानंद को लेकर घूमते रहे। परंतु एक समय की बात, घूमते 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 चिदानंद और वह सन्यासी दोनों अलग हो गए, कुछ कार्य में लग गए होंगे तो अलग हो गए। चिदानंद अब अकेला हो गया और अकेला होने से तो और अच्छा हुआ, वे भारत के सभी तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया, तीर्थ यात्रा की और घूमते घूमते यह चिदानंद पंढरपुर में पहुंचा। पंढरपुर में पहुंचकर पंढरपुर में एक बहुत ही सुंदर परंपरा में आने वाले एक भक्त थे जिसका नाम था लक्ष्मीपति पुरी। और चिदानंद ने सोचा कि आगे चलकर प्रचार करना है और गुरु शिष्य परंपरा में ही रहना चाहिए, इसलिए लक्ष्मीपति पुरी से दीक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान को कोई दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, भगवान क्या दीक्षा शिक्षा लेंगे, भगवान तो स्वयं सभी लोगों के बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके वेद स्वास सुतिचारी, जिसके सांस से वेदों की ध्वनि निकलती है उसे शिक्षा और दीक्षा की आवश्यकता है। सो हरि पढ़त कौतुक भारी, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, परंतु फिर भी जगत को उपदेश देने के लिए भगवान भी दीक्षा लेते हैं। नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले लक्ष्मीपति पुरी को रात को स्वप्न दिया कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं साक्षात बलराम हूं, इसलिए कल सुबह ना मत कहना दीक्षा देने में, पेपर दूंगा तो फेल मत कर देना। तो पहले से ही सपनों में दर्शन दे दिया कि मैं साक्षात बलराम हूं। दूसरे दिन सुबह चिदानंद गए लक्ष्मीपति पुरी के पास, गुरुजी मैं आपके शरण में हूँ, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, कृपया करके आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो बहुत ही सुंदर दीक्षा का समारोह हुआ, लक्ष्मीपति पुरी ने चिदानंद को दीक्षा दिया और दीक्षा देकर कहा हे वस, आज से तुम्हारा नाम चिदानंद नहीं है, आज से तुम्हारा नाम नित्यानंद है। नित्यानंद महाप्रभु की। तो इस प्रकार से पंढरपुर में हम लोग गए थे परंतु याद नहीं किए, चिदानंद नित्यानंद रूप में परिवर्तित हुए, दीक्षा हुई और नित्यानंद का नाम हुआ। और दीक्षा लेकर ही दीक्षा लेकर तुरंत नित्यानंद प्रभु वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। ये हमारे गौड़ीय वैष्णव की प्रथा है, हमारे जितने भी गौड़ीय वैष्णव प्राय जो जो दीक्षा लिए हैं वे दीक्षा लेकर तुरंत वृंदावन जाने के लिए ही निकल पड़ते हैं। अब देखिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जितने भी गोस्वामी हुए महाप्रभु से दीक्षा लेकर वृंदावन, उस परंपरा में हमें भी रहना चाहिए, दीक्षा लेकर एक बार वृंदावन। नित्यानंद प्रभु तुरंत वृंदावन गए और वृंदावन जाकर हा कृष्ण अपने द्वापर युग की लीला को याद कर करके कृष्ण की बहुत याद आई। जब कृष्ण के विरह में आतुर होने लगे तो नित्यानंद प्रभु ने देखा कि अब कृष्ण से मिलना चाहिए और कृष्ण ने बंगाल में नदिया ग्राम में जन्म ले लिया है, बहुत सुंदर सुंदर लीला संपन्न कर रहे हैं वह निमाई। नित्यानंद प्रभु वृंदावन से नदिया मायापुर में जाने के लिए निकल पड़े और नित्यानंद प्रभु मायापुर में आकर नंदन आचार्य के घर पर रुके, डायरेक्ट महाप्रभु से नहीं मिले, डायरेक्ट अपने भाई चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिले। नित्यानंद प्रभु देखना चाहते थे कि कृष्ण मेरे पास आता है या नहीं। तो नंदन आचार्य के घर पर नित्यानंद प्रभु रुके हुए थे मायापुर में और महाप्रभु भी वहीं आजू बाजू में रहते थे। महाप्रभु ने एक दिन सुबह उठकर अपने भक्तों से कहा, जाओ इस गांव में मेरा बड़ा भाई आकर रह रहा है, तुम ढूंढ कर लेकर आओ। सब लोग गए, सुबह से लेकर शाम तक पूरा गांव खोज दिए परंतु नहीं मिला। महाप्रभु एक सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे कि मेरे कृपा की अलावा आप गुरु को ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। संसार में यदि गुरु किसी को मिलता है तो कृष्ण की कृपा से, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वह कहां छिपा है। महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर नंदन आचार्य के घर पर आए। नित्यानंद प्रभु ध्यान में बैठे थे। नंदन आचार्य को कहा कि यहीं पर मेरा भाई छिपा हुआ है। नित्यानंद प्रभु ध्यान में थे, खड़े नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये क्या कर रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक अद्भुत श्लोक का उच्चारण किया है। ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण को प्रार्थना किए थे, वह श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोले, नो मीयते ब्रह्मपुषेत विडंबराय गुंजा वसन परिपिच्छस लसन मुखाय वन्या स्त्रजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मा श्री मिदुपते पशु पंग जाय और बरहा पीडम नटवर वपु करणयो करणी। बस इतना बोले, श्लोक पूरा नहीं हुआ। नित्यानंद प्रभु खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु से अपने आलिंगन में इतना भर लिए। दोनों भाई कई सालों के बाद आपस में मिले। दोनों भाइयों के आंखों से अजस अविरत अश्रु धारा बहने लगी और वही कृष्ण और बलराम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में नंदन आचार्य के घर में इनका मिलन हुआ। हरे कृष्णा हरे। इस प्रकार से गोलोक के बिछड़े हुए दोनों भाई नंदन आचार्य के घर पर मिले हैं। बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है एक दूसरों को देखकर। अरे हम 10 दिन किसी काम के लिए बाहर चले जाते हैं और घर पर आकर अपने पत्नी और बच्चों को देखकर इतना प्रसन्न होते हैं। ये साक्षात स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का बलराम जी है, गोलोक के बिछड़े हुए हैं और यह मिले हैं, कितना आनंद वहां पर उमड़ा होगा। और इससे हजारों गुना आनंद तो वहां के भक्त लोग ले रहे थे। तो इस प्रकार से मिले। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप नंदन आचार्य के घर पर मत रहो, आप शिवा पंडित के घर पर रहो, वे आपकी सेवा करेंगे। तो उस दिन से नित्यानंद प्रभु, अब हमारा फोकस केवल नित्यानंद प्रभु के ऊपर ही है क्योंकि बीच में बहुत बहुत लीला है, परंतु नित्यानंद प्रभु के ऊपर ही हम चलेंगे। नित्यानंद प्रभु शिवास आचार्य के घर पर, शिवास पंडित के घर पर रह रहे थे। शिवास पंडित की पत्नी का नाम था मालती। मालती एक पुष्प का नाम है। एक समय की बात, शिवास पंडित की पत्नी मालती कुछ दिया करने के लिए कुछ घी के पात्र को लेकर जा रही थी। पात्र को लेकर जा रही थी तो प्रांगण में एक कौवा उड़कर आया और उस पात्र को लेकर उड़कर चला गया। बेचारे बहुत गरीब थे, इसलिए बेचारी रोने लगी। एक कौवा लेकर चला गया, विलाप करने लगी। तो उतने में नित्यानंद प्रभु दौड़कर आए, आकर कहे कि माता क्यों परेशान हो रही हो, क्या हुआ? कहा कि वह कौवा घी का पात्र लेकर उड़ गया। नित्यानंद प्रभु ने कहा, डरो मत। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे कौवे, आप हमारी माता का यह घी भरा पात्र वापस लौटा दो। इतना कहने पर कौवा आया, जैसे मनुष्य हो, मनुष्य की तरह उसकी बात को समझ गया हो, वैसे आया, पात्र को रखकर चला गया। नित्यानंद प्रभु यही भाव में थे कि हम कृष्ण और बलराम हैं और गुरु पत्नी ने कहा है मृत पुत्र को लेकर आओ, तो उस भाव में उस घी के कटोरे को वापस मंगा लिए। और क्यों वह कौवा नित्यानंद प्रभु के कहने पर नहीं लाएगा? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। वे जिसको प्रेरणा देना चाहे वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। नित्यानंद प्रभु का स्वरूप ही कारणोदकशाही शिरोदकशाही विष्णु है और वही शिरोदकशाही विष्णु परमात्मा के रूप में स्थित है। तो क्यों वृंदावनदास ठाकुर कहते हैं, क्यों नहीं वह कौवा नित्यानंद प्रभु के कहने पर वापस आएगा? इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के बहुत गुणगान वृंदावन दास ठाकुर गाए हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकाशित करने के लिए बहुत ही सुंदर लीला किए। नित्यानंद प्रभु शिवास पंडित के घर पर रह रहे थे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पर गए, नित्यानंद प्रभु कुछ काम के लिए बाहर गए होंगे। तो आइए वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में ही, एक दिन प्रभु श्री निवास एर सहित बसिया कहे न कथा कृष्ण र चरित। एक दिन श्रीवास पंडित के घर पर चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। पंडित तेरा परीक्षा प्रभु विशंभर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित की परीक्षा लेने के लिए श्रीवास पंडित को कहा। क्या कहा? यही अवधूत कहने राखन निरंतर। अरे श्रीवास पंडित, आप इस नित्यानंद ये अवधूत को अपने घर इतने दिनों से क्यों रखे हो? साधु को अपने घर पर रखना चाहिए एक दिन दो दिन के लिए, महीना महीना साल साल बीत गया फिर भी आप उसे अपने घर पर रखे हो। कौन जाति कौन तिलु किछु ये न जाने, क्या आप उसकी जाति को जानते हो? ये अवधूत कहां से आया है ये जानते हो? किस जाति का है, किस पाति का है, कौन है, कहां से आया है, ये सब कुछ नहीं जानते हुए भी आप उसको अपने घर पर रखे हो। वास्तव में आप तो बहुत परम उदार हो, परंतु इस प्रकार से उदार नहीं बनना चाहिए। आप नार जाति कुल यदि रक्षा चाहो, मैं आपको चेतावनी देता हूं। हे श्रीवास, तुम्हें मैं चेतावनी देता हूं कि यदि आपको अपने कुल की रक्षा करनी हो तो इस नित्यानंद को, इस अवधूत को घर से बाहर कर दो। महाप्रभु यह कह रहे थे, आप नार जाति कुल यदि रक्षा चाहो तबे जाट जट। ये बंगला और गुजराती बहुत नजदीकी लैंग्वेज भाषा है। कहते हैं तबे जट एई अवधूतेरे घुचाओ। तब तुरंत यदि अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो तो तुरंत इस नित्यानंद को अपने घर से बाहर कर दो। इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो श्रीवास पंडित कहते हैं कि हमारे परीक्षा ये नहीं उचित है प्रभु। इस प्रकार से मेरी परीक्षा आप ले रहे हो ये उचित नहीं है। मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। इस दीने के जे तोमा भजे सही मोर प्राण, नित्यानंद तोर देह आमाते प्रमाण। मैं जानता हूं कि वास्तव में नित्यानंद प्रभु आपके प्राण है। नित्यानंद प्रभु यदि यहां से चले जाए तो आपके प्राण चले जाएंगे। नित्यानंद प्रभु आपके प्राण है, मैं इस बात को जानता हूं। यदि आप ये कह रहे हो ना नित्यानंद प्रभु को निकाल दो, यदि मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे, यदि यह नित्यानंद मुसलमान बन जाए, यदि यह नित्यानंद गाय और बकरे को काट भर भी काट कर भी खाने लगे और 24 घंटा मदिरा पीता रहे, जति प्राण धन यदि मोर नाश करे और मेरा सारा धन ये नाश कर दे और मेरा कत्ल कर दे, फिर भी तथापि हमारा जीते नहीं भी अन्यथा, फिर भी इस नित्यानंद के बारे में मेरे मन में भी गलत विचार नहीं आ सकता है। सत्य सत्य तुम्हारे कहू यही कथा। प्रभु मैं आपको ये सत्य कह रहा हूं, नित्यानंद के बारे में इतना कुछ करने के बाद भी गलत विचार मुझ में नहीं आ सकता है। जब इस प्रकार से महाप्रभु ने सुना, एते कसुनिया जबे श्रीवासेर मुखे, श्रीवास के मुख से महाप्रभु ने जब ऐसे सुना तो हुंकार करिया प्रभु उठे तार दुखे। तो महाप्रभु हुंकार करके जय हो श्रीवास जय हो करके खड़े हुए और प्रभु बोले कि बलीला पंडित श्रीवास, हे पंडित श्रीवास आप क्या बोल रहे हो? नित्यानंद प्रति तोर एते को विश्वास, नित्यानंद प्रभु के प्रति आपका इतना विश्वास है कि आपका कत्ल कर दे, धन लेकर चला जाए, मदिरा पिए, मांस खाए, फिर भी आपको मन में भी गलत विचार नहीं आएगा? वास्तव में आज आप नित्यानंद प्रभु को यदि जानने वाले कोई हो तो हे श्रीवास आप हो। मोर गोप्य नित्यानंद जानी ले से तुमी तुम्हारे संतुष्ट हैया वर दिए हमें। वास्तव में नित्यानंद तत्व को आप जानते हो और इसलिए मैं तुम्हें आज ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा जो न भूतो न भविष्यति, न तो भूतकाल में किसी को किया था न तो भविष्य में किसी को करूंगा। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को वरदान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु के तत्व को जानते हैं। कैसा वरदान दिए? बहुत ही सुंदर वरदान है। हम जैसे मंदी वालों के लिए तो कहते हैं, यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे, इस संसार में कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए और लक्ष्मी को यदि भिक्षा करनी पड़े, लक्ष्मी को भिक्षा करनी पड़ती है? कभी नहीं। लक्ष्मी जो भगवान की पत्नी है, भगवान की सेविका है, उस लक्ष्मी की छोटी सी भी कृपा कटाक्ष हो जाए, वह व्यक्ति संसार में बहुत बड़ा धनी मनी माना जाता है। संसार के लोग उसकी पूजा करते हैं। उस छोटी सी कृपा से वह लक्ष्मी के पास भी यदि धन खाली हो जाए और उस लक्ष्मी को दर दर भटकना पड़े, भीख मांगना पड़े, परंतु हे शिवास, आपके घर पर कभी धन खत्म नहीं होगा। लक्ष्मी के घर से एक बार धन खत्म हो जाएगा, परंतु आपके घर से धन खत्म नहीं होगा। तथापि दरिद्र तोर नहीं बेक घर है। केवल धन नहीं दे रहा हूं, असली धन भक्ति भी तुम्हें वरदान में दे रहा हूं। तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे कुटुंब में रहने वाले सभी लोग भक्त हो जाएंगे, शुद्ध भक्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, बिड़ाल कुकुर आदि तुम्हारा बड़ी, तुम्हारे घर पे रहने वाला कुत्ता भी भक्त बन जाएगा। हरे कृष्णा हरे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की महिमा है और महाप्रभु के मुख से ये महिमा गाई गई है। बहुत बहुत लीला है, परंतु समय ठीक है और एक लीला सुन लेते। लीला तो बहुत है, आज सुबह से आप सुनते ही आए हैं मंदिर से, और सुधांशु प्रभु भी सुना रहे थे। नित्यानंद प्रभु का जब नाम आता है तब भक्त के मन में सबसे पहले कौन सी लीला आती है? जगाई मधाई। जगाई मधाई है ते मई से पापिष्ट। नित्यानंद प्रभु की जो असीम कृपा है, ये जगाई मधाई लीला में हमें देखने मिलती है। लीला कहां से प्रारंभ करूं, कहां पर अंत करूं, बहुत लंबी लीला है, परंतु यही सुनिए। इस प्रकार से नवद्वीप में रहते रहते चैतन्य महाप्रभु को एक दिन विचार आया कि वास्तव में मैं इस कलयुग में प्रकट हुआ हूं हरि नाम का प्रवर्तन करने के लिए, और बहुत जल्द अब हरि नाम का प्रवर्तन करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ी काउंसिल मीटिंग की बुधवार की। ये काउंसिल मीटिंग अभी से नहीं है, ये महाप्रभु के समय से होते आई है। और ऐसी काउंसिल मीटिंग होती थी कि 7 बजे तक जितने आ गए उतने आ गए, बाद में दरवाजा बंद। शिवा सांगन में दरवाजा टाइम होता था, यदि उस टाइम का अतिक्रमण किया तो किसी को एंट्री नहीं। परंतु हमारे कुंडल कृष्ण प्रभु बहुत कृपालु है, भगवान से भी भगवान के भक्त कृपालु होते हैं। खैर, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मीटिंग में, सभी भक्तगण बैठे थे, सर्व दामोदर इत्यादि, महाप्रभु ने कहा कि हे निताई चांद, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए बेचारे, डरते हुए खड़े हुए, क्या कहेंगे अभी। और हरिदास जी, हरिदास ठाकुर आप सब जानते हो, ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और 22 बाजारों में जिसे पीटा गया था और फिर भी हरिनाम लेना बंद नहीं हुआ था। नामाचार्य जिसे कहा जाता है, नाम के आचार्य हरिदास ठाकुर है। काजी ने कह दिया था उस बादशाह ने कि इस हरिदास को 22 बाजार में पीटो। 22 बाजार में पीटना हम तुरंत बोल देते हैं, परंतु इसका अर्थ क्या होता है? एक बाजार में लेकर जाया जाएगा, 4 जल्लाद उसे कोड़ों से चाबुक से पीटेंगे, और पीट पीट कर जब तक बेहोश न हो जाए तब तक पीटेंगे। बेहोश हो जाने के बाद उसे दूसरी बाजार में लेकर जाया जाएगा, दूसरे चौराहे में लेके जाकर फिर से पीटेंगे। ऐसे 22 बाजारों में पीटने का आदेश। और 22 बाजारों, 22वें बाजार में जब हरिदास ठाकुर को पीटा जा रहा था, चारों जल्लादों ने कहा कि अब तो हरिनाम लेना बंद करो, तुम्हें मार मार कर हम थक गए, हमारे हाथ लाल लाल हो गए, परंतु आपका नाम बंद नहीं हो रहा है, अब तो नाम लेना बंद करो। हरिदास ठाकुर ने इतना ही कहा था कि खंड खंड होई यदि ये तन प्राण मेरे, यदि तुम मुझे मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर दो, परंतु इस शरीर से यदि जीवा ठीक रही तो ताबू ना बदने आमी ना छाड़ी दो हरिनाम, मैं हरिनाम लेना बंद नहीं करूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम। ऐसे हरिदास ठाकुर ये सभी परीक्षाओं से पास होकर महाप्रभु के पास आए थे, और महाप्रभु ने देखा कि हरि नाम के आचार्य हैं, इसलिए उसे भी खड़े किए। हे निताई चांद और हे ठाकुर हरिदास ठाकुर, कल से तुम्हें एक काम करना है। बोले बोली सरकार, क्या करना है? कल से तुम्हें घर घर जाना है और सभी घर में जाकर भीख मांगनी है। क्या आटा मांगना है, पैसा सीधा लाना है, क्या लाना है? महाप्रभु ने कहा किसी भी प्रकार की वस्तु नहीं, घर घर में जाकर क्या करना है? बोल कृष्ण, भज कृष्ण, लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। बस यही भिक्षा मांगनी है कि अपने मुख से एक बार कृष्ण बोलो। नाम की भिक्षा तुम्हें कल से मांगनी है। वृंदावनदास ठाकुर कहते हैं कि नवद्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा यह हरि नाम के प्रचार का श्री गणेश था। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को भेजे जाओ और पूरे दिन में जिस जिन के घर पर जाते हो हरिनाम बुलाओ, और जो बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो मुझे शाम को आकर बताना। तो ये सुबह उठकर श्री गणेश किए और सबके घर पर गए। और नित्यानंद प्रभु थोड़े मजाकी स्वभाव के थे, थोड़े चंचल स्वभाव के थे, हरिदास ठाकुर बहुत पीठ थे, तो दोनों की जोड़ी जम नहीं रही थी। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर घर पर जाकर कहते थे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। जैसे ही किसी के घर पर जाते थे तो लोग सीधा और आटा लेकर आते थे, कुछ लोग धन देते थे। तो ये कहते थे हमें धन नहीं चाहिए, हमें आटा नहीं चाहिए, हमें एक ही चीज चाहिए, आपके मुख से हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। मुख से केवल एक बार भगवान का नाम बोलो, बस यही चाहिए। कुछ लोग तो सोचते थे बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, कुछ लेते नहीं है, केवल भगवान का नाम बुलाते हैं। तो कुछ तो विपरीत सोचते थे, लगता है ये लोग कल या परसों चोरी करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए आज देखने के लिए आए हैं घर पे क्या है क्या नहीं। नहीं तो ऐसे ही बिना मांग के चले जाते, ऐसा होता है। चोर जब चोरी करते हैं तो महीने से सब देखता है क्या है घर पर कैसा है, और फिर एक दिन चोरी करता है। तो ये लोग सोचते हैं लगता है ये लोग चोर है और देखने के लिए आए, तो पीटते थे मारते थे, ये लोग को भागना भी पड़ता था। तो कुछ लोग उसके चरणों में गिर जाते थे, आप धन्य हो आप मान। वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचारकों को ऐसा ही होता है, प्रचारकों को कभी बड़े बड़े हार या माला मिलते हैं और कभी कभी गाली भी मिलती है। तो भक्तों को चाहिए कि ये दोनों सहन करना सीखे। और गाली एक बार व्यक्ति सहन कर लेता है, परंतु मान सम्मान को सहन करना बहुत मुश्किल है। आपसे डेढ़ फुट में ऊपर बैठा हूं, परंतु जो ऊपर बैठा है उसे गिरने का भय है, जो पहले से नीचे बैठा है उसे गिरने का भय नहीं है। इसलिए जिसे मान और सम्मान मिलता है इसे बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। खैर कभी कभी प्रणाम मिलता था, दंडवत करते थे, तो कुछ लोग मार देते, कुछ लोग गाली देते थे। इस प्रकार से पूरा दिन तक यह प्रचार करते थे और शाम को महाप्रभु को आकर सुनाते थे। इस प्रकार से बहुत दिन तक चला। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर घूमते घूमते एक जगह पर जा रहे थे, तो उन्होंने दूर से देखा कि दो व्यक्ति शराब के नशे में चूर हैं और डोलते हुए लोगों को परेशान करते हुए रास्ते से आ रहे हैं। और जैसे ही लोग उसे देख रहे हैं, देखकर कई किलोमीटर दूर भाग रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने किसी लोगों को पूछा, भागते हुए लोगों को पूछा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो? तो कहा आपको यदि जान प्यारी है तो आप भी भागो। नित्यानंद प्रभु ने कहा बताओ क्या है? कहते हैं ये दोनों सबसे बड़े यहाँ के पापी हैं, ये किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते हैं। ये लोग ने ऐसा पाप नहीं है जो ये लोगों ने नहीं किया है। नित्यानंद प्रभु ने कहा इसका नाम क्या है? इसका नाम है जगाई और मधाई। कहा कि ये जन्म से ब्राह्मण है, परंतु गलत संगति के कारण ये लोग म्लेच्छ से भी गए गुजरे बन गए, सबको परेशान। नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा, इशारा किया, क्या लगता है आपको जाना है? हरिदास ठाकुर ने दूर से कहा भाई नहीं, वो थोड़े उम्र वाले थे तो कहा नहीं। नित्यानंद प्रभु ने कहा क्यों नहीं जाना है? जाना है, हमारे महाप्रभु परम कृपालु है, और जब ऐसे लोगों को हम प्रचार करके भक्त बनाएंगे तब हमारे प्रभु का नाम सिद्ध होगा। दीन दयाल भगवान का एक नाम है, दीन दयाल, दीनों पर कृपा करने वाले, दीनों के प्रति दयालु। तो जो दीन नहीं है बड़े बड़े लोग हैं उसके प्रति तो कृपालु होते ही हैं। जब दीनों ऐसे दीनों के प्रति जब भगवान कृपा कर दे तो हमारे भगवान का नाम सिद्ध होगा। चलो जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर तो डर रहे थे, तो पीछे पीछे चल रहे थे। नित्यानंद तो गए आगे, ये दोनों शराब से मत हो रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने जाकर कहा कि भाई बोल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पता कृष्ण धन प्राण। दोनों शराब के नशे में थे। कहा क्या बोले आप? नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हम कह रहे हैं कि आप एक बार कृष्ण बोलो। कहा कृष्ण बुलाना चाहता है? कहा कि तुम हम लोगों को जानते नहीं हो, हम इस संसार के सबसे बड़े पापी हैं और आप देख नहीं रहे हो सब लोग हमारे भय से कांप रहे हैं और भाग रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने फिर से कहा कि जो भी है परंतु आप भगवान का नाम लीजिए, बोलो कृष्ण लह कृष्ण 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 नाम, आप कृष्ण का नाम लीजिए। तब जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने यह कहा तो जगाए और मदाय ने कहा कि आज लगता है कि आज हमारे हाथों में कई दिनों से खुजली जो निकल रही है आज हम संतुष्ट होंगे। जगाए और मदाय ने कहा भैया ये दोनों पर हम टूट पड़ते हैं और आज दोनों को मार डालते हैं। जैसे ही नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने सुना कि मारने की बात है, तुरंत अपनी धोती ऊपर करके वहां पर भागे। अब मरता क्या नहीं करता, ऑलरेडी कितने लोगों का वध कर चुके थे, ये तो बहुत भागे। ये भी उसके पीछे पीछे बहुत भागे और भागते भागते हरिदास ठाकुर कह रहे थे, मैं बोल रहा था ना, हरिदास ठाकुर व्यंग में कहने लगे क्यों भाई भगवान का नाम सिद्ध नहीं करना है? नित्यानंद प्रभु ने कहा आज बच जाएंगे उसमें ही हमारे भगवान का नाम सिद्ध है, नहीं तो हमारे भगवान का नाम डूब जाएगा, लोग कहेंगे प्रचार करने गए थे और मरकर वापस आए। दोनों भाग रहे थे पीछे, ये दोनों बहुत पीछा किए। हरिदास ठाकुर कहने लगे अब नहीं भागा जाता है, अब भागा नहीं जाता है। नित्यानंद प्रभु ने कहा भागो भागो, जान बचानी है तो भागो। इस प्रकार से दोनों भागते हुए भागने भी बहुत लीला है, परंतु भागते भागते चैतन्य महाप्रभु के पास आए। दोनों हाँफ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बोलो कैसा गया आज का दिन, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? हरिदास ठाकुर तो कुछ नहीं बोले, शांत से बैठे थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा ये आपका बुक का थैला और ये आपका प्रचार का साधन, हम लोग कल से प्रचार नहीं करेंगे। आपने हमें प्रचार करने के लिए भेजा है क्या, अमर बनने के लिए भेजा है? महाप्रभु ने कहा जरा बताओ तो सही क्या हुआ है, क्या बताएं आपको? दो व्यक्ति मिल गए जगाए और मदाए, बहुत बड़े पापी थे, तो मैंने सोचा आपका नाम सिद्ध कर दूं, दीन दयाल। आपका नाम सिद्ध करने गया तो मर ही चुके थे, मरते मरते प्रभु बचे हैं हम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि डरो मत, उस व्यक्ति ने है नित्यानंद आपका दर्शन कर लिया है इसलिए निश्चित रूप से वे भक्त बनेंगे। नित्यानंद प्रभु ने कहा भक्त बनाना है तो आप बनाओ, हम भक्त नहीं बनाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम उसे मिलो फिर से। और नित्यानंद प्रभु ने बहुत कहा कि हम नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सोचा आप महाप्रभु देखने थोड़ी ना आने वाले हैं, कल से दूसरी जगह प्रचार करने चले जाएंगे। परंतु हरिदास ठाकुर मन ही मन में बहुत दुखी थे कि महाप्रभु ने नित्यानंद के साथ मुझे क्यों रख दिया, दूसरे किसी के साथ रखा होता तो ठीक है। अद्वैत आचार्य को पूरी कहानी बताया कि नित्यानंद के बारे में क्या बताऊं, ये इतना चंचल है, रास्ते में चलते बालक को थप्पड़ मारता है, थप्पड़ मार के कहता है कृष्ण बोल, और उसके माता पिता जब आते हैं उसको डांटने के लिए तो ये तो भाग जाता है, वो माता पिता मुझे पकड़ते हैं। किसी की दुकान से कुछ चुरा कर खा लेता है, भूख लगती है तो वे लोग मुझे पकड़ते हैं, क्या बताएं। और वो जगाए और मदाए को प्रचार करने की क्या जरूरत थी, उस पापियों के पास गया और क्या बताए कैसे करके प्राण बचाकर हम आए हैं। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने कहा कि जो भी हुआ ठीक हुआ, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रचार का दिन चल रहा था, लेकिन वह दिन आया जिस दिन नित्यानंद प्रभु को हुआ कि आज जगाए मदाए का उद्धार मैं करके रहूंगा। नित्यानंद प्रभु एक दिन प्रचार करके थके मांदे थे, थके हुए थे, मांदे नहीं थे। रात को घर आ रहे थे तो सोचा कि चलो आज जगाए मधाई का उद्धार करना है, तो जगाए मधाई के गली से होकर गुजरे। जगाए मधाई के पास गए और ये दोनों 24 घंटा नशे में रहते थे। ये दोनों शराब पीकर मदमस्त थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप कृष्ण का नाम एक बार लो। उसने कहा कौन है? नशे में ऐसा बोला जाता है, कौन है रे तू? लिखा है वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार से लिखते, कौन है रे तू? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं अवधूत हूं। किसने भेजा है? अब थोड़ा डर लगने लगा। किसने भेजा है? जब इस प्रकार से हम संसार में भी कोई पूछता है तो बड़े लोग की पहचान देते हैं। तो एक इसने कहा कि निमाई ने भेजा है। कहां जा रहा है? निमाई के पास जा रहा हूं, परंतु जाते जाते मैं एक चीज कह रहा हूं कि आप कृष्ण बोलो। तो उसने कहा कि हाँ, उसी दिन वो दिन जो आए थे वही तुम दोनों हो ना, और फिर से हमारे पास आए हो। इस प्रकार से बोलकर उनके हाथ में एक बहुत बड़ी मटकी थी जिसमें मदिरा भरी हुई थी। उस मटकी को लेकर जोर से पटककर नित्यानंद प्रभु के सिर पर मार दिया। अरे मूर्ख, हमें भगवान का नाम लेने के लिए कह रहे हो? और भगवान का वह क्षति सच्चिदानंद विग्रह अजस अविरत खून की धारा बहने लगी। फिर भी नित्यानंद प्रभु उसे कहना बंद नहीं किए। यदि हम होते तो तुरंत भागकर आ गए होते। नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़कर कह रहे थे आप एक बार कृष्ण का नाम लो। और ये तो मारते ही जा रहा था और खून से लथपथ हो गए थे नित्यानंद प्रभु। और ये कह रहा था ये नित्यानंद प्रभु कौन है? थोड़ा सोचिए, ये वह बलराम है जो घूमते घूमते नैमिषारण्य में पहुंचे थे। उग्र सवाजी रोमहर्षण जी खड़े नहीं हुए थे, उतने में क्रोध आ गया, तिनके से उसका वध कर दिया। वही बलराम यहाँ पर, उस बलराम को मारा जा रहा है, इतना खून निकल रहा है, फिर भी उस व्यक्ति को हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि एक बार कृष्ण का नाम ले लो। करुणा की भी दया की भी हद होती है, उस हद की सीमा को भी पार कर दिए नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु की करुणा को भी कम करके यदि किसी ने दिखाया है तो नित्यानंद प्रभु ने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्रोध करेंगे परंतु नित्यानंद प्रभु को क्रोध नहीं आएगा। नित्यानंद प्रभु खून से लथपथ हैं। और किसी व्यक्ति ने महाप्रभु को उतने में जाकर कह दिया कि नित्यानंद को किसी ने मारा है और उसे खून निकल रहा है। महाप्रभु तो भाव में आवेश में आ गए और आवेश में आकर दौड़ते हुए वहां पर आए। और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, कृष्ण बोलिए कृष्ण बोलिए। उतने में महाप्रभु आए, चक्र चक्र सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, चक्र प्रकट हुआ। परंतु नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के चरण पकड़कर कहा, प्रभु आपका कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए करुणा वरुणालय आपका अवतार है। आपका अवतार किसी का वध करने के लिए नहीं हुआ है। कृपया करके आप अपना सुदर्शन चक्र छिपा लीजिए और इस पर कृपा कीजिए। महाप्रभु ने चक्र को आदेश दिया, वह छिप गया। और चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर जब इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए रोके, तब उसमें से जो जगाई था उसने देखा कि हमने इसे इतना मारा है फिर भी ये हमें बचा रहा है, तो उसके हृदय में करुणा आ गई। वास्तव में ये धन्य है। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर गया कि प्रभु हमें क्षमा कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं क्षमा करने वाला कौन हूं? जैसे दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज का अपराध करके गए थे, भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये तो अम्बरीश यदि आपको क्षमा करना चाहे तो जाओ, उसकी शरण में जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं आपको क्षमा करने वाला कोई नहीं हूं, यदि नित्यानंद प्रभु तुम्हें क्षमा कर दे तो अलग बात है। तब वह जगह नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरा। नित्यानंद प्रभु ने उसे गले लगा लिया। नित्यानंद प्रभु ने गले लगाया, जगाई के अपराध को क्षमा किया, जगाई को परम भक्ति प्रदान कर दी गले लगाकर। लेकिन मदाई तो देख रहा था, मदाई सरेंडर नहीं हुआ था। तो जगाई मदाई के पास गया और जाकर कहने लगा क्या देख रहे हो? तो एक भक्त बहुत ही सुंदर कहते हैं, ये मुझसे न पूछो मैं क्या देखता हूं, कृपा के निगाह की मैं राह देखता हूं। हे मदाई, हे जगाई, मदाई ने कहा जगाई को कि मुझे मत पूछो कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो महाप्रभु की कृपा की राह देख रहा हूं कि कब वे मुझे अपने चरणों में ले लेंगे, अपने गोद में ले लेंगे और मुझे मेरा आलिंगन करेंगे। तो तुरंत मदाई चैतन्य महाप्रभु के चरण में गया, चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन करके जगाए और मदाई के सारे पाप हर लिए और शुद्ध भक्ति प्रदान कर दी। हरे कृष्णा शुद्ध भक्त बन गए। जिस शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने स्तरों से गुजरना पड़ता है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और भाव के स्तर में भी कोई भरोसा नहीं है। हमने अभी अभी कथा की जड़ भरत की जो भाव के स्तर में थे, अजस अविरत अश्रुधारा नयनम गलत अश्रुधारिया होने वाला भी हरण में आसक्त हो गया, भाव के स्तर में भी बाद में प्रेम के स्तर में पहुंचकर शुद्ध भक्ति मिलती है। वे शुद्ध भक्ति कुछ किए बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से ऐसे पापियों को प्राप्त हो गए। जब इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने कृपा की जगाए मदाए पर, तो जो पापी नहीं थे वे चिल्ला उठे कि आपने पापियों पर ऐसी कृपा की है तो हमारा क्या दोष है। परंतु नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा और इसका साक्षात दृष्टांत प्रमाण है कि सारा पाप चैतन्य महाप्रभु ने हर लिया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का शरीर काला हो गया, जो गौर वर्ण था वह श्याम वर्ण हो गया, परंतु गंगा में स्नान करके हरिनाम कीर्तन करके वह भी ठीक हो गया। परंतु वृंदावन दास ठाकुर इसके बाद के अध्याय में बहुत ही सुंदर घटना लिखे हैं, इसका वर्णन तो बहुत लंबा है लेकिन संक्षिप्त में कहूं कि यह लीला जब हो रही थी तब स्वर्ग से सभी देवता देखने के लिए आ गए थे। ब्रह्मा जी, शिव जी, 33 करोड़ देवी देवता यह लीला देखकर फूल की वर्षा कर रहे थे और साक्षात यमराज भी आकर देख रहे थे इस लीला को। वृंदावन दास ठाकुर पूरा एक अध्याय इस पर लिखे हैं यमराज जी के ऊपर। जब सब लोगों ने देखा कि ऐसे जगह मदाई पर भगवान ने कृपा कर दी, हद होती है करुणा की भी, सब लोग जय जयकार किए और जय जयकार करके वापस जा रहे थे, तो सबसे पहले दौड़कर यमराज जी अपने यमपुरी में गए और जाकर चित्रगुप्त को पूछा कि आज मैं अद्भुत घटना देखकर आया हूं कि महाप्रभु ने एक पापियों पर उद्धार, पापियों का उद्धार कर दिया है, तो चित्रगुप्त बताओ कि ये लोग का पाप कितना था तो हमें पता चले कि आगे चलकर कैसे लोगों का उद्धार होगा। यमराज जी स्वयं, यमराज जी तो बिजी है, कितने लोगों के बारे में जानकर बैठेंगे किसका कितना पाप है, परंतु निश्चित रूप से यमराज जी के कंप्यूटर में सब कुछ लिखा होता है। भागवत के षष्ठ स्कंध में वर्णन है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है यह देखने के लिए एक व्यक्ति पर 14 कैमरे लगे हुए हैं। 14 लोग सभी लोगों को देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। खैर वह अलग विषय है, परंतु यमराज जी को सब चित्रगुप्त को पता होता है। चित्रगुप्त ने कहा जगाए मदाई के कितने पाप है जरा दिखाओ। चित्रगुप्त ने कहा क्या बताऊं मैं इसके कितने पाप थे, जब इसके पाप लिख रहे थे तो हम 10 चित्रगुप्त इसके पाप लिख रहे थे और ये 10 जन जो लिख रहे थे वह लिख लिख कर थक गए, और जो 14 लोगों को जो नियुक्त किया है उसको लाने के लिए आप खबर लेकर आओ क्या क्या पाप किए हैं, वे बेचारे खबर ला ला कर थक गए, और वे खबर ला रहे थे और ये बेचारे लिखने में इतना तेज हो रहे थे तो ये खबर लाने वाले और लिखने वाले आपस में झगड़ पड़े। वो कहते थे तुम कितना लेकर आ रहे हो न्यूज, और ये कहते थे अब जल्दी लिखो हमें जाना है, वो पाप तो शुरू है उसका। क्या बताऊ यमराज जी, चित्रगुप्त ने कहा, विंदनदास ठाकुर कहते क्या बताऊ आपको, एक दरवाजा खोलकर कहा देखो ये पहाड़ जो है ना, ये पहाड़ और किसी का नहीं है, ये पहाड़ तुमको दिख रहा है ये जगाए और मदाए के पाप की लेखनी है, उसके पाप लिख लिख कर ये पहाड़ भर गया है। परंतु आप कह रहे हो कि उसका उद्धार हो गया है तो प्रभु बताओ इस पहाड़ को समुद्र में फेंक दूं। चित्रगुप्त जैसा कह रहा था कि प्रभु इस पहाड़ को मैं समुद्र में फेंक दूं, पीछे मुड़कर देखा तो यमराज जी बेहोश होकर गिर गए थे कि ऐसे पापी व्यक्ति का उद्धार हो गया मेरे सामने। यमराज जी बेहोश होकर गिर गए। चित्रगुप्त ने फोन करके कहा जो लोग देवता लोग वापस जा रहे थे बुलाया सबको यहां पर, ये धर्मराज जी गिर गए। सब लोगों ने जोरों से कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया उस कीर्तन में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी के सभी पहले प्रथम 10 पुत्र निवृत्ति प्रचेता नारद इत्यादि सनकादिक सब लोग आए। शिव जी आए, 33 करोड़ देवी देवता, धमाधार कीर्तन हुआ। वृंदावन दास ठाकुर कीर्तन का वर्णन कर रहे हैं, उस कीर्तन में ऐसा नाच हुआ कि शिव जी ऐसा नाच रहे थे, शिव जी के कपड़े गिर गए, उसे भान नहीं था। शिव जी भूल गए कि ये कपड़े निकल रहे हैं, सब लोग भान भूल गए। और ऐसा कीर्तन हुआ कि आज चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने जगाए और मदाय पर असीम कृपा की है। इसलिए संसार में आने वाले लोगों को कलयुग के पापी तापी जीव पर निश्चित रूप से कृपा होगी। इस प्रकार से जगाए मदाय की लीला संपन्न हुई और नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से प्रचार करते रहे। प्रचार करते करते जब नित्यानंद प्रभु के जीवन का बहुत काल बीत गया, तब एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि हे नित्यानंद प्रभु, अब मैं गंभीरा जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, गंभीरा में गंभीर लीला करने के लिए, और मेरी इच्छा है कि आप प्रचार कार्य करो, और प्रचार करने के लिए गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए। इसलिए वसुधा जी और जानवा जी आपकी राह देखकर खड़ी है, आप जाओ और विवाह करो, और विवाह करके गृहस्थ जीवन स्वीकार करके प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु का मन नहीं हो रहा था चैतन्य महाप्रभु से अलग होने के लिए, परंतु महाप्रभु की आज्ञा थी इसलिए वह शिरोधार्य करना था। बहुत महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो पहले नंदन आचार्य के घर पर मिले थे, अंतिम मिलन अब उसका हुआ। बहुत रोए और मूर्छित होकर रोते हुए दोनों अलग हुए। नित्यानंद प्रभु गए, वसुधा जी जो द्वापर युग में साक्षात वारुणी थी, वसुधा जी और रेवती जी जो इस कलयुग में जानवा जी के रूप में उत्पन्न हुई थी, ये दोनों के साथ विवाह किए, और विवाह करके वीरचंद्र नामक नित्यानंद प्रभु का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ, नित्यानंद प्रभु वास्तव में अवधूत बन गए, सन्यासी बनकर अपने जीवन का अंत किए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे। तो ये है नित्यानंद प्रभु की संक्षिप्त जीवन चरित्र। इसमें कई सारी त्रुटियां रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। वास्तव में नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलना बिल्कुल असंभव है। कृष्णदास कविराज की भाषा में यदि कहा जाए तो पूरी शेर कीट है तो मुई से लघिष्ठ। वास्तव में मेरे जैसा एक कीड़े जैसा जीव इतने बड़े महान आचार्य का क्या गुणगान कर सकता है, क्योंकि मोर नाम जे ले तार पाप है। यदि कोई मेरा नाम भी ले लेता है तो वह बहुत बड़ा पापी हो जाता है, और यदि कोई मेरा दर्शन कर ले तब तो वे नरक में चला जाता है। तो वैसी स्थिति मेरी है। वास्तव में कविराज गोस्वामी की स्थिति नहीं है, ये हम जैसे वक्ताओं की, हम जैसे पापियों की। परंतु फिर भी आप सब उच्च श्रोता हो और उच्च इंद्रियों से आपने इसे ग्रहण किया है। कुछ गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। आपके चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हरे कृष्णा।